आज है 29 नवंबर दिन रविवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। हरियाणा में मंत्री से विवाद के चलते आईपीएस अधिकारी का हुआ तबादला। राज्य में राजनीति गरमाई।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा और ढकोसले वाला नारा देने वाली मोदी और खट्टर सरकार में अगर जरा सी भी संविधान की सुरक्षा को लेकर गैरत है तो उन्हें अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
दिवाली मिलन के मौके पर प्रधानमंत्री ने की पत्रकारों से मुलाकात। क्या मीडिया में है छवि सुधारने की कोशिश?
नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया तो जिस तरीके से कार्यक्रम करता है, जिस विषयों को लेकर के चिंतित रहता है, जो मीडिया के सरोकार रहते हैं, उनमें इस तरीके के आयोजनों से अंतर नहीं आता है।
क्या डेटा ट्रांसफर करने में बड़ा बदलाव ला सकती है लाइफाई? ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। हरियाणा सरकार ने फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया का तबादला कर दिया है। संगीता वही एसपी हैं जिनकी शुक्रवार को एक मीटिंग में कैबिनेट मंत्री अनिल विज से नोकझोंक हो गई थी। मंत्री ने उन्हें एक मीटिंग से निकल जाने के लिए कहा था, लेकिन एसपी ने अपनी कोई गलती नहीं होने की दलील देकर मीटिंग से जाने से इनकार कर दिया था। संगीता को फतेहाबाद से मानेसर में इंडिया रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तरी माली में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के बेस पर हुए रॉकेट हमले की निंदा की है। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 2 संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक थे। उन्होंने कहा कि इस हमले को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और माली की सरकार से जल्द और सख्त कार्रवाई की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि वो इस हमले से बहुत ही आहत हैं। चरमपंथी संगठन अंसर दीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों के अनुसार हमलावर वरिष्ठ चुनाव अधिकारी को निशाना बनाना चाहते थे। वो इस हमले में बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर की मौत हो गई। इलाके के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान करीमी कहते हैं,
एक नफर इंतहार खुनिंदी प्यादा मवाद हमल शाह इन्फिजार में था। वो हमले इंतहारी,
एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को अधिकारी की गाड़ी के पास उड़ा लिया, जिसकी वजह से ड्राइवर की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में से एक कार के अंदर ही बैठा था और दूसरी एक स्थानीय महिला थी। इलाके के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान करीमी। कैमरून के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी शहर दबांग में 2 महिला आत्मघाती हमलावरों ने धमाका किया, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार एक किशोरी ने दुकान में विस्फोट किया तो दूसरी लड़की ने एक परिवार को निशाना बनाया। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ही लड़कियां नाइजीरिया में मौजूद चरमपंथी संगठन बोको हराम से थीं। इससे पहले ये संगठन कैमरून के उत्तरी इलाके में कई हमले करता रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ईंधन पर चल रहे गंभीर अवरोधों के विरोध में स्कूली छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। शनिवार को बीरगंज में सैकड़ों स्कूली छात्रों ने इस प्रदर्शन के विरोध में और मधेसी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। बीरगंज में मधेसी समुदाय के लोगों की तादाद ज्यादा है और इन अवरोधों में इस इलाके ने मुख्य भूमिका निभाई है। मधेसी समुदाय सीमा पार के भारतीयों से सांस्कृतिक तौर पर काफी मिलता है। काठमांडू में भी करीब 500 लोगों ने मधेसी समर्थन में प्रदर्शन किया। सर्बिया के हथियार कारखाने के प्रमुख ने कहा है कि पेरिस हमले में इस्तेमाल किए गए ज्यादातर हथियार 1980 के दशक के अंत में जास्तवा आर्म्स फैक्ट्री में बने थे। 13 नवंबर को पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों में 130 लोग मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरियाणा से। जैसा कि आपने अमल चौधरी से मुख्य समाचारों में सुना, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया के तबादले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। संगीता कालिया को फतेहाबाद जिले की एसपी के पद से हटाकर मानेसर की रिजर्व बटालियन में तैनात किया गया है। आपको याद होगा कि फतेहाबाद में एक बैठक के दौरान संगीता कालिया की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके एक दिन बाद यानी कल उनका तबादला कर दिया गया। राज्य में विपक्षी पार्टियां अनिल विज का इस्तीफा मांग रही हैं। अशोक कुमार की ये रिपोर्ट।
I can't. सार्वजनिक रूप से मंत्री के साथ तनातनी आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया को महंगी पड़ी और इसकी कीमत उन्हें तबादले के रूप में चुकानी पड़ी। हरियाणा के फतेहाबाद में एक बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लोगों की समस्याएं सुनने आए थे और उनके साथ इस बैठक में एसपी संगीता कालिया भी मौजूद थीं। जिले में शराब की अवैध तस्करी के मुद्दे पर मंत्री अनिल विज ने एसपी कालिया से पूछा कि पुलिस कोई कदम क्यों नहीं उठाती। इस पर एसपी ने कहा कि कदम उठाए जाते हैं, लेकिन दोषी जेल से छूटकर फिर अवैध तस्करी करने लगते हैं। कुछ ही देर में ये चर्चा बहस में तब्दील हो गई और गुस्से में स्वास्थ्य मंत्री ने संगीता कालिया को गेट आउट कह दिया। पुलिस अधीक्षक ने बैठक से बाहर जाने से इनकार किया तो मंत्री खुद उत्तेजना में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस मुद्दे पर विवाद के बाद अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
उसने बार बार कहा है कि सरकार ये धंधा करवा रही है, सरकार शराब बिकवा रही है, तो बहुत गंभीर आरोप है। अगर एक हरियाणा सरकार का अधिकारी ओपन मीटिंग में मीडिया के सामने, लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने इतना बड़ा आरोप लगाता है तो उसकी गहराई तक जाना जरूरी है, और गहराई तक जाने के लिए उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच करना भी जरूरी है। मामला बहुत गंभीर है।
लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने अनिल विज को बर्खास्त करने की मांग की है और उन पर एक दलित महिला आईपीएस अधिकारी का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा और ढकोसले वाला नारा देने वाली मोदी और खट्टर सरकार में अगर जरा सी भी संविधान की सुरक्षा को लेकर गैरत है तो उन्हें अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके मंत्री और सरकार को उस दलित महिला आईपीएस अधिकारी जो हरियाणा की बेटी भी है, जो एक गरीब परिवार में जिनके पिता कारपेंटर थे और वहां से वो आईपीएस अधिकारी तक बनी, उनसे माफी मांगनी चाहिए।
वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हरियाणा राज्य राम भरोसे चल रहा है।
इस तरह की बात जहां एक मंत्री को खरी खरी सुननी पड़ी, मुझे लगता है कि आज राम भरोसे ये प्रदेश चल रहा है। ना तो इस सरकार की अधिकारियों के ऊपर कोई पकड़ है, ना ही सरकार के अंदर इतना जज्बा है कि वो अपने अधिकारियों पे कंट्रोल कर समाज को न्याय दिला सके।
संगीता कालिया 2009 बैच की आईपीएस हैं और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के तौर पर जानी जाती हैं। ताजा विवाद के बाद उन्हें फतेहाबाद की पुलिस अधीक्षक के पद से हटाकर मानेसर के रिजर्व बटालियन में तैनात कर दिया गया है। लेकिन उनके तबादले पर हो रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह कहते हैं,
तो जब आप गेट आउट, जब आप नहीं जाते तो मैं चले जाता हूँ, तो उन्हें खुद ही स्वीकार कर लिया इस बात को कि मैंने जो है ना गलत बयान दिया है, अपमानित किया है। और उस चीफ सेक्रेटरी को ये मैं कहूंगा, हिदायत हमने ये दी है कि इसकी जांच करी जाए और 338 के हिसाब से के अनुसार 338 के अनुसार इसमें एफआईआर दर्ज की जाए।
जाहिर है इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे, साथ ही ये भी हो सकता है कि संसद के जारी शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को आलोचना झेलनी पड़े।
आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया के तबादले पर उठा विवाद, ये थी अशोक कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों को अपने दिवाली मिलन कार्यक्रम में न्योता दिया और उनके लिए विशेष दावत रखी। इस आयोजन में मोदी के साथ सेल्फी लेने की पत्रकारों में किस तरह होड़ रही, ये कल दिन भर टीवी चैनलों पर चलता रहा। इस मौके पर मोदी पत्रकारों के साथ बीच आकर उनसे मिले, लेकिन उनका कोई सवाल नहीं लिया। हमारे साथी अशोक कुमार ने इस आयोजन को लेकर बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल से और पूछा कि इस आयोजन का क्या मकसद हो सकता है।
देखिए, भाजपा पारंपरिक तौर पर एक दीपावली मिलन का आयोजन करती आई है, तो ये एक वार्षिक उनका मिलन का कार्यक्रम रहता है पत्रकारों के साथ। पिछले साल भी दीपावली के बाद इसी तरीके का आयोजन हुआ था। पिछले साल एक उन्माद था सेल्फी खींचने के लिए, इस साल भी था पर उतना नहीं, पिछले साल तो बहुत हजूम था। तो ये एक पारंपरिक इनकी व्यवस्था है भाजपा की, उसका आयोजन ये करते आए हैं।
इतने सारे मीडिया को आपने बुलाया, तो कुछ सवाल लेके आप जो राय है देश जो जानना चाहता है, असहिष्णुता का मुद्दा हो या फिर और इस तरह के मुद्दे हो, तो उसका एक हो सकता था।
वो आपकी बात अपनी जगह सही है, ये हाँ ये संभावनाएं मौजूद थी, पर शायद प्रधानमंत्री ने इस फोरम का इस्तेमाल करने की नहीं सोची। जहां तक असहिष्णुता का विषय है, उसके ऊपर लोकसभा में सोमवार को एक जो चर्चा है वो स्वीकार कर रखी है, उसमें दोपहर बाद चर्चा होगी उस विषय पर, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री उस चर्चा के दौरान बोलेंगे। तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि चूंकि इस समय संसद चल रही है और संसद में इन विषयों के ऊपर बहस होने वाली है, तो क्यों नहीं संसद के बाहर बोलने के बजाय वो संसद के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार रखें, जहां लोगों को कोई शंका है उस शंका का समाधान करें। तो ऐसा अनुमान है कि वो शायद उस बहस का इंतजार करना चाह रहे हैं।
जी, क्या आप ऐसे भी देखते हैं कि संसद में अहम बहस से पहले एक तरह से अपनी छवि को मीडिया फ्रेंडली बनाने की कोशिश हो सकती है ये?
नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया तो जिस तरीके से कार्यक्रम करता है, जिन विषयों को लेकर के चिंतित रहता है, जो मीडिया के सरोकार रहते हैं, उनमें इस तरीके के आयोजनों से अंतर नहीं आता है। हालांकि ये अच्छा अपने आप में एक अच्छी परंपरा है कि मीडिया के साथ जो सत्तासीन लोग हैं, शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो जब आमने सामने आते हैं तो वो दोनों पक्षों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहता है।
लेकिन पत्रकारों के अगर कुछ सवाल लिए जाते तो पत्रकारों के लिए पत्रकारिता की दृष्टि से और ये सकारात्मक आयोजन होता।
जी, इसमें तो हमारा व्यावसायिक स्वार्थ है ही है, हम लोगों के लिए तो वाकई ये बहुत अच्छा रहता। तो लेकिन वो कहते हैं कि ना मामा से काना मामा भला, तो आयोजन ना करने से चलिए इतना सीमित स्कोप है जिसका वो मिलन अगर हुआ है तो वो भी अच्छी परंपरा है, उसको इन्होंने बनाए रखा है। हाँ, अगर प्रश्न लेते, शंका समाधान करते तो और भी अच्छा था।
पत्रकारों से दिवाली मिलन के मौके पर मिलना अच्छा, लेकिन प्रश्नों के जवाब भी देने चाहिए थे प्रधानमंत्री को। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल। भारत के दीपक सोलंकी ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जो डेटा ट्रांसफर की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। उनकी इस तकनीक का नाम लाईफाई, और ये वाईफाई के मुकाबले 100 गुना तेज है। लाईफाई का इसी सप्ताह यूरोपीय देश एस्तोनिया की राजधानी टालिन में परीक्षण किया गया। दीपक सोलंकी ने बीबीसी को बताया कि ये तकनीक कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने।
हमने रिसर्च स्टडीज पढ़ी जिसमें बताया गया था कि लाइट से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो काफी सक्सेसफुल रहे। तब हमें पता चला कि जो करंट हमारा वायरलेस सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वाईफाई कोई भी क्राउडेड एरिया है वहां पर अच्छे तरीके से नहीं चलता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है कंजेशन की वजह से, जिससे वाईफाई की स्पीड बहुत लो हो जाती है। या फिर आप वाईफाई के राउटर से अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाएंगे घर में, या फिर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, तो सिग्नल आपका काफी वीक हो जाता है। तो ये वाईफाई की लिमिटेशंस थी, तो हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी से, और लाइट से हमने डेटा ट्रांसफर किया, और जब हमें थोड़ी सक्सेस मिली उसके बाद फिर हमने उस पर इंटरनेट एक्सेस का नेक्स्ट चीज ट्राई करी, जो अभी हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभी।
तो यहाँ से आपको एस्टोनिया जाने की जरूरत क्यों पड़ी?
2.5 years ago हमने स्टार्ट किया था, और उस टाइम हमने काफी इन्वेस्टर से बात करी बिकॉज हमें फंडिंग चाहिए थी, बट लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है। फिर हमें पता चला कि एस्टोनिया में जो स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं उनको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका एक एक्सेलरेशन प्रोग्राम था, उसमें हमने अप्लाई किया, हमारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर, और वहाँ हमें फंडिंग मिली, उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट मिली।
इस नई तकनीक के आने के बाद क्या बदलाव देखने में आएगा, क्या उपयोगिता है इसकी?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन से हम दूर हो जाते हैं, जितना भी वायरलेस सिस्टम है वो सारा रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं जो हेल्थ के लिए भी उतना नुकसानदायक है। तो उस केस में क्या है कि हम एलईडी बल्ब्स जो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, जिससे हम काफी एनर्जी सेव कर सकते हैं, उसी बल्ब का यूज करके हम इंटरनेट चला सकते हैं, और इंटरनेट पे हम वाईफाई से एटलीस्ट 100 times फास्ट स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं। हम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पे बहुत बर्डन हो गया है आजकल। हम बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे फोन के नेटवर्क डाउन हो गए हैं, कॉल ड्रॉप का इशू हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइट हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो फ्री है, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट को लाइसेंस करने की जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रम को।
ये कितना कॉस्ट करेगा? उस
कॉस्ट इसकी काफी कम है, अभी हमारी कॉस्ट लेस देन $10 है, तो हम उसको और कम पे लेके आ सकते हैं लोगों तक। तो इसमें कोई एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, जो भी हमारी बल्ब की कॉस्ट होती है उसी कॉस्ट में हम इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं।
जैसे भारत सरकार जो है मेक इन इंडिया की बात करती है और वो कहती है, इस बात को प्रोत्साहित करती है कि भारत में लोग जो है आए और बाहर के लोग भारत में निवेश करें, अपना खोज, नई खोज और नई तकनीक, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपको भारत छोड़कर एस्टोनिया जाना पड़ा निवेशक की तलाश में।
जब हमने सर स्टार्ट किया था उस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का सिनेरियो हाईटेक कंपनीज के लिए नहीं था। अगर आप देखेंगे जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, या तो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं वो, या फिर फूड टेक में हैं, या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हमारे देश में।
तो वाईफाई से 100 गुना तेज है लाईफाई, इसका ईजाद करने वाले दीपक सोलंकी से बात कर रहे थे अजय शर्मा। और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं अमल चौधरी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। अपने पिछले कार्यक्रम में उन्होंने अंगदान के विषय पर चर्चा की थी। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दोगुतोग्लू यूरोपियन यूनियन के नेताओं से एक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। इस दौरान आपसी रिश्तों में सुधार के साथ प्रवासी संकट पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री दोगुतोग्लू के ऑफिस ने जानकारी दी कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने उन्हें इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बान की मून से पेरिस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ही विश्व में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। भारतीय क्रिकेट की अंडर 19 टीम बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय सीरीज खेलेगी। इसके अंतर्गत आज भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला मैच कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में खेला जाएगा। इंडियन सुपर लीग का 50वां मैच केरला ब्लास्टर्स FC और FC गोवा के बीच खेला जाएगा। कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा।
तो अमल चौधरी बता रहे थे कि आज जिन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। और अब BBC की विशेष 100 दमदार महिलाओं की सीरीज़ में आज बात आशा भोसले की। वो अब तक 12,000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साल 1943 में संगीत का सफ़र शुरू करने वाली आशा भोसले पर अब 82 साल की है, लेकिन उनका कहना है कि वो खुद को 30 साल का महसूस करती हैं। पेश है BBC एशियन नेटवर्क की संवाददाता शबनम महमूद की आशा से मुलाकात पर आधारित ये रिपोर्ट, सुना रही हैं मानसी दास।
इन आँखों की मस्ती के पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जो।
एक ऐसी आवाज जिसे पहचान की जरूरत नहीं, यह वो पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 7 दशक तक सैकड़ों नई पुरानी और अपने वक्त की मशहूर हीरोइनों को अपनी आवाज दी। जहां एक ओर उन्होंने शास्त्रीय संगीत और भजन गाए, वहीं दूसरी ओर उनके गाए कैबरे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साल 1943 में संगीत का सफर शुरू करने के बाद वे अब तक 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वह है 82 साल की उम्र में भी 30 का महसूस करने वाली आशा भोसले।
Inside I'm like 30. I can do anything. You tell me, I will do it like this.
अंदर से मैं अब भी 30 की ही हूँ। आप मुझे बताएं कि ये करना है तो मैं वो कर दूंगी, बस यूं ही।
गाने का मूड होता है, कैसे जब सैड सॉन्ग आया तो हम एकदम सोच लेते हैं सैड।
अगर कोई दर्द भरा गाना गाना है तो मैं महसूस करूंगी दर्द को और फिर गाऊंगी। इसी तरह अगर मस्ती भरा गाना हो तो उसका मूड बनाऊंगी। आपको अपना मूड फटाफट बदलना पड़ता है।
आपने जीने ना दिया, so you feel sad. Okay? I'm now I'm singing. ओके पिया तू अब तो अच्छा लाइक दैट यू कैन चेंज योर मूड फटाफट.
You've had a brimful of Asha on the 45. Now you have her here, in person.
इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण वह बॉलीवुड के संगीत जगत के शीर्ष तक पहुंची. 7 दशक की संगीत यात्रा के दौरान उन्हें अपने गाने के अंदाज में बदलाव भी करने पड़े. उन्होंने कहा,
I have to, otherwise I will be there only. If you go with youngster,
मुझे करना ही पड़ा, वरना मैं वहीं की वहीं रह जाती. अगर आप युवाओं के साथ गाएंगे तो आपको कमबख्त इश्क, ले गई गाना ही पड़ेगा. लेकिन क्या ऐसे अलग और बाकी गायिकाओं से हटकर गाने गाना उन्हें कभी असहज नहीं लगा? आशा के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ.
नो नो, दिस आर गुड सॉन्ग्स. कमबख्तेश ट्यून वेरी नाइस एंड ले गई गुड. शरारा शरारा इज गुड. I don't feel that this is bad music.
ये अच्छे गाने हैं. कमबख्त इश्क, ले गई धुन अच्छी है. शरारा शरारा भी अच्छा है. मुझे नहीं लगता कि ये खराब संगीत है या खराब बोल हैं.
लेकिन जिस बॉलीवुड ने उन्हें शोहरत और समृद्धि दी, अब उससे आशा बहुत खुश भी नहीं है.
Now there's no dialogue, no good acting, nothing, just dancing.
अब ना अच्छे डायलॉग हैं, ना अच्छी एक्टिंग, बस डांसिंग है. अच्छा संगीत भी नहीं है, बस रिदम रिदम रिदम, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता.
हालांकि खुद आशा के गाने के अंदाज के कारण उन्हें सेक्सी गानों की क्वीन माना जाता था, लेकिन उन्हें लगता है कि आजकल के गाने अश्लील हो गए हैं. वह मानती हैं कि जब वह हेलेन जैसी अभिनेत्रियों के लिए आइटम गाने गाती थी, तब उन्हें खराब बोल करार दिया जाता था.
But now I feel that was a bhajan. Bhajan means God songs. Nowadays,
लेकिन आज के गानों की तुलना में मुझे लगता है कि वो तो भजन थे. आज के गाने बहुत बुरे हैं.
लेकिन यह सिर्फ खराब बोलों का मुद्दा नहीं है. महिला अधिकार समर्थक महिलाओं के अत्याधिक कामुक चित्रण के लिए भी बॉलीवुड की आलोचना करते हैं. उन लोगों का कहना है कि यह यौन हिंसा के लिए प्रेरित कर सकता है. आशा इससे पूरी तरह सहमत नहीं है.
Half of, because bad people, they don't want to see film and do like that. But some people,
बुरे लोग बुरे ही होते हैं. ऐसा नहीं कि वे फिल्म देखेंगे और फिर बुरा काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग जब देखते हैं कि खूबसूरत लड़की ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि बिकनी, और वो डांस कर रही है, वो भी अश्लील, तो वो सोचते हैं और फिर आदमी आदमी ही होता है.
लेकिन इस प्रवृत्ति से आशा और उनकी दीदी लता पर कभी असर नहीं पड़ा. दशकों तक वह बॉलीवुड की दो ध्रुव बनी रही, जिनकी नकल तो बहुतों ने की, लेकिन बराबरी कोई नहीं कर पाया.
So many years, one side is Lata Mangeshkar and one side Asha Bhosle. There is no third artist. We don't regret because
बहुत सालों तक एक तरफ लता मंगेशकर थी, एक तरफ आशा भोसले, कोई तीसरा कलाकार नहीं था.
Not domination, but like
हमने रानियों की तरह राज किया.
तो 82 साल की होने के बावजूद 30 का महसूस करती हैं आशा भोसले, और अभी भी लोगों के दिल पर कर रही हैं राज. और अमल चौधरी आ चुके हैं स्टूडियो समाचार पत्रों के साथ. क्या कहते हैं आज के अखबार अमल
जी? आज की प्रमुख खबरों की बात करें तो हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत अधिकतर अखबारों में कुछ 2-3 खबरें हैं जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, भारत की केंद्र सरकार की GST विधेयक पर सरकार की मुश्किलें, प्रशांत भूषण का जन लोकपाल पर बयान और मंत्री से कहासुनी पर IPS का तबादला प्रमुख रूप से प्रकाशित किया गया है. इसमें नवाज शरीफ वाली खबर की बात करें तो इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बिना शर्त वार्ता को तैयार है. उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात के दौरान भारत से मित्रता बढ़ाने का इरादा जताया है. वहीं GST विधेयक पर मुश्किलों वाली खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बिल को पारित कराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है. इसके अलावा जन लोकपाल वाली खबर में आपके पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने केजरीवाल सरकार पर लचर लोकपाल कानून मसौदा जो है विधानसभा में पेश करने का आरोप लगाते हुए उसे जन लोकपाल नहीं बल्कि महाजोकपाल इसे बताया है उन्होंने। वहीं हरियाणा सरकार ने आईपीएस संगीता कालिया का जिस तरह से तबादला कराया वो उसको आपने भी अपने प्रोग्राम में आपने सुना ही दिया सुशीला। और अन्य खबरों की बात करें तो शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी के लाय डिटेक्टर टेस्ट की खबर को हिंदुस्तान और जनसत्ता समेत लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। वहीं नवभारत टाइम्स ने दिल्ली से जुड़ी एक खबर प्रकाशित की है जिसके अंतर्गत अब जितने भी वार्ड हैं उनका नक्शा बदल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 2011 की जनगणना के हिसाब से नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाएगा और 2017 में जो MCD चुनाव होने हैं वो वार्डों के इन्हीं बदले हुए नक्शों के आधार पर होंगे। इसके अंतर्गत किसी भी वार्ड में 60,000 से अधिक लोग नहीं होंगे। वहीं NBT में ही एक और खबर है जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने एक सम्मेलन में कहा कि सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर कांग्रेस ने जो प्रतिबंध लगाया था वो गलत था। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी के 1980 में आपातकाल लगाने को भी गलत ठहराया है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच अपने दूसरे ही दिन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। कल जब खेल समाप्त हुआ तब न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 116 रन बनाए थे। दूधिया रोशनी में खेले जा रहे टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद शायद बल्लेबाजों को रास नहीं आ रही है। तभी तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी कल 224 रन पर सिमटी और उन्हें पहली पारी के आधार पर 22 रनों की मामूली बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने 5 चौकों की मदद से 53 और विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर नेविल ने 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू हुई तो उनके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, पीटर सिडल और मिचेल स्टार्क की स्विंग होती गेंदों के सामने परेशान नजर आए। सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम 10, मार्टिन गप्टिल 17 और उसके बाद केन विलियमसन केवल 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रॉस टेलर ने पारी को संभाला लेकिन वो 32 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर बोल्ड हो गए। अगला शिकार कप्तान ब्रेंडन मैकुलम बने जो 20 रन बनाकर मिचेल मार्श की गेंद पर LBW हुए। अब दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के पास 94 रनों की बढ़त है और उसके 5 विकेट बाकी हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका को 3 दिन में ही नागपुर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 124 रन से हराने के बाद गदगद भारत के कप्तान विराट कोहली ने आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अमित मिश्रा की जमकर तारीफ की।
Well, it is a big plus. Three guys who, two out of the three are very, very consistent.
हमारे लिए ये बड़ी सकारात्मक बात है। हमारे पास 3 स्पिनर हैं, जिनमें से 2 में बेहद निरंतरता है, जबकि अमित मिश्रा किफायती हैं। उन्हें पता है कि गेंद को कहां पिच करना है। ये देखना सुखद है कि तीनों टीम का हिस्सा हैं। भारतीय परिस्थितियां विरोधी टीम पर दबाव बनाने में मदद करती है। मैं तीनों से खुश हूं, खासकर रविंद्र जडेजा से जिन्होंने वापसी करते हुए शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। कप्तान विराट कोहली के शब्द। वहीं बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की पीवी सिंधु मकाऊ ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। 5वीं वरीयता हासिल पीवी सिंधु ने कल सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता हासिल जापान की अकाने यामागुची को 21-8, 15-21, 21-16 से मात दी। अब फाइनल में उनका सामना आज 6वीं वरीयता हासिल मिनात्सु मितानी से होगा। उधर रायपुर में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स में मेजबान भारत ने पहले मैच में अर्जेंटीना के हाथों मिली 3-0 की हार के सदमे से उभरते हुए कल जर्मनी को 1-1 से बराबरी पर रोका। भारत के लिए आकाशदीप सिंह ने खेल के आखिरी क्वार्टर में गोल कर मैच को जर्मनी की झोली में जाने से बचा लिया। इससे पहले जर्मनी ने खेल के 5वें मिनट में ही गोल कर भारत को दबाव में ला खड़ा किया था।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। हरियाणा सरकार ने फतेहाबाद की SP संगीता कालिया का तबादला कर दिया है। संगीता वही SP हैं जिनकी शुक्रवार को एक मीटिंग में कैबिनेट मंत्री अनिल विज से नोकझोंक हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने उत्तरी माली में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के बेस पर हुए रॉकेट हमले की निंदा की है। इस हमले में 3 लोग मारे गए जिसमें से 2 संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आत्मघाती हमले में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों के अनुसार हमलावर वरिष्ठ चुनाव अधिकारी को निशाना बनाना चाहते थे। वो तो इस हमले में बच गए लेकिन उनके ड्राइवर की मौत हो गई। कैमरून के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी शहर दबांग में दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने धमाका किया जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार एक किशोरी ने दुकान में विस्फोट किया तो दूसरी ने एक परिवार को निशाना बनाया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।